ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। परम प्यारे परम पिता, ज्ञान के सागर, उस पिता परमात्मा के सर्व प्यारी संतानों, आज ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में आप सभी भगवान के निमंत्रण पर आए हो। निमंत्रण कईयों के पास गया, बहुतों ने रिजर्वेशन कराया, चाहना भी रखी कि हम जाएं, लेकिन कुछ एक ही पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि आप सबको उस पिता परमात्मा ने दिल से निमंत्रण दिया है, उस ईश्वर की आवाज को अपने पहचान कर यहां पहुंच गए हो। अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अभी धीरे धीरे गर्मी तो कम होती जा रही है, फिर भी अभी भी गर्मी बनी हुई है। यहां ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आते ही लगता है पिता परमात्मा अपने बच्चों के लिए बाहें पसार करके खड़ा है। प्रकृति ने उस पिता परमात्मा के साथ अपना ठंडी हवाओं से आप सबका हार्दिक स्वागत करे। ऐसा महसूस कर रहे हो? महसूस हो रहा है? तो तन तो हो रहा है, साथ ही साथ मन को सकून, मन को शांति, मन को खुशी देने के लिए विशेष रिट्रीट का आयोजन किया गया है। तो चलिए आज हम इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सत्र को शुरू करने जा रहे। स्वशासन सफल प्रशासन की कुंजी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की ओर से आज ये जो 3 दिन का रिट्रीट होने वाला है, इस कार्यक्रम में आज भारत देश से और नेपाल से खास चलकर हमारे बीच में पधारे हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की हमारे इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय को एडमिनिस्ट्रेशन में जो अनुभवी मूर्त, अनुभवी रतन आज हमारे बीच में शोभा मंच को सजाएंगे, उनमें से विशेष हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की जो नेशनल चेयरपर्सन है, हमारी आदरणीय श्रद्धेय आशा दीदी जी, उनको मैं बड़े सम्मान के साथ दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। आकर के आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करिएगा। आशा दीदी जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की है हमारी अवधेश दीदी जी, उन भोपाल से चल करके हमारे बीच में आए हैं। मैं अवधेश दीदी जी का दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। विशेष मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। और हमारी राजयोगिनी बीके पूनम दीदी जी, जोनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग एंड सब जोन इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी जयपुर से चल करके हमारे बीच में है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप जरूर मंच पर उपस्थित हो जाइएगा। और मिस्टर प्रेम सुख बिश्नोई जी, IAS डायरेक्टर फिशर्स एंड एडिशनल चार्ज ऑफ कमिश्नर एम्प्लॉयमेंट, आपसे राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ। मिस्टर प्रेम सुख बिश्नोई जी, आकर के आप भी मंच की शोभा बढ़ाइएगा। मिस्टर मनोज सेठी जी, ICAS ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंस एडवाइजर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, उनसे मेरा नम्र निवेदन है मंच की शोभा को बढ़ाइएगा। नेक्स्ट है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी, IAS सेक्रेटरी फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर, मैं इनसे निवेदन करती हूँ मंच की शोभा बढ़ाए। और आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष मेहनत करके हम सबको विशेष निमंत्रण देने के लिए निमित्त हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के हमारे ब्राता हरीश जी, उनसे मैं निवेदन करूंगी, हरीश भाई जी आप आकर के मंच की शोभा को बढ़ाइएगा। हमारे शैलेश भाई जी गुप्त रीति से इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए हमारे बीच में होंगे, उनसे मैं निवेदन करूंगी। शैलेश भाई जी आप आकर के मंच की शोभा बढ़ाइएगा। हमारा मंच तो महान विभूतियों से सज चुका है, ऊपर से उस पिता परमात्मा की विशेष नजर विशेष दृष्टि हम पर है। चलिए उस पिता परमात्मा को हम सभी दिल से धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी भी दिल से, आपने भगवान आपने हमें बुलाया और मैं चला आया, ठीक है, आप सभी दिल से गीत गाते हुए दिल से उस पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद दीजिएगा। आपके आह्वान पर हम पहुंच गए, आपके गोद में बैठ करके आज का आनंद लेंगे। 3 मिनट पिता परमात्मा की याद से शुरुआत करें।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद करते हुए हम आमंत्रित करते हैं मुलुन से आए हुए मीनाक्षी बहन, छाया बहन आकर के हमारे मंच पर उपस्थित महानुभावों का गुलदस्ता एवं बैज देकर स्वागत करें। आप जोरदार ताली तो बजा सकते हो, हाँ? हमारे इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए ऐसे अनुभव विनोरत कहाँ कहाँ से चल करके आए हैं, इनके जीवन का प्रशासन 50 साल, 60 साल, 40 साल का आज थोड़े से समय में सबका सार आप सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय दीदी जी, वेलकम सॉन्ग के लिए हमारे बीच में दीपा बहन संबलपुर से, कहां भी हो दीपा बहन संबलपुर आप भी सन्मुख आइएगा, पुष्पों के द्वारा बैश के द्वारा स्वागत हो रहा है। आप सब का भी स्वागत, मन के भावों को गीतों में पिरोकर आप सब के बीच में रखने के लिए हमारे दीपा बहन जी संबलपुर ओडिशा से खास आई हैं, तो जैसे भी ये स्वागत हो जाएगा आप अपने मन के भावों से सबका स्वागत करेंगे। दीपा बहन, ओम शांति, ओम शांति।
अरावली की वादियों पर ज्ञान सरोवर के आंगन पर आपके शुभ आगमन से खुशियां छाई है इस घर पर। आपका ये घरवार है, प्यारा प्रभु परिवार है, अपने घर में आपका ही स्वागत है, सत्कार है, स्वागत है, सत्कार है। आपके अपने ही घर में आपके स्वागत में ये छोटा सा गीत प्रस्तुत है। सभी देख रहे होंगे ज्ञान सरोवर के प्रांगण में बहुत रंग बिरंगे फूल हैं और परमात्मा की नजरों में आप सभी उनकी बगिया के फूल हैं। Shoot!
मिलता प्यार पार है, अपने घर में आपका सम्मान है, सत्कार है, अपने घर में आपका स्वागत है, सत्कार है।
आप सभी तालियों का साथ दे सकते हैं। ये ज्ञान सरोवर, ज्ञान का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है, शक्तियों का सरोवर है, जो आप सभी अनुभव कर रहे होंगे।
अपने घर में आपका दिल से स्वागत है। बड़ी सुंदर सुरीली आवाज में आप सबका बहन ने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं, उन्होंने तो अपनी आवाज़ से आपका स्वागत किया, हम नृत्य के द्वारा आपका स्वागत करना चाहते हैं। गुलमोहर कॉलोनी, गुलमोहर क्या है, गुलमोहर डिवाइन डांस ग्रुप भोपाल से, खास वहां से हमारी छोटी छोटी नन्नी नन्नी बच्चियां अपने भाव को नृत्य के द्वारा आप सबके स्वागत में प्रस्तुत करना चाहती है। गुलमोहर डिवाइन डांस ग्रुप भोपाल।
आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी, स्वागत करे मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी, स्वागत करे मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से, सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से, सहकार से, सुविचार से, सत्कार से, शुभकामना व प्यार से, स्वर्ग ला के लेंगे दम, लेते हैं कसम, स्वागतम 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 स्वागतम।
सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन,
बच्चियों ने अपने दिल के भावों को नृत्य के द्वारा इतना दिल से स्वागत किया जो आपके सारी थकान तो दूर हो गई होगी ना। इतना जोरदार स्वागत इन बच्चियों ने अपने भावों से किया, हम भी इनका दिल से धन्यवाद कहेंगे, अपने जीवन में खूब अच्छे पढ़ लिख करके ऊंचे पद को पाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अब हमारे बीच में हम सबको विशेष निमंत्रण देने के लिए निमित्त और इस माउंट आबू हेडक्वार्टर में रहकर एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग की सेवाएं देखने वाले ब्राता हरीश भाई जी, पिछले 42 वर्षों से इस आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए 33 वर्षों से मुख्यालय हमारा माउंट आबू जिसमें रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अपने शब्दों के द्वारा आप सबके गले में एक सुंदर सी माला पहनाना चाहते हैं। तो स्वागत शब्दों के द्वारा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्राता हरीश भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता तथा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के याद करते हुए आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग है, जो स्पेशल प्रशासकों की सेवा के लिए बनाई गई है, इस विंग के द्वारा एक बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर ये आध्यात्मिक रिट्रीट रखी गई है, स्पिरिचुअल रिट्रीट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स ऑन सेल्फ सॉवरेंटी की टू सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, माना सफल प्रशासन की कुंजी हो तो वो स्वशासन है। इस विषय पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इस ज्ञान सरोवर की पवित्र और आध्यात्मिक भूमि पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहने भी न केवल भारत, लेकिन मैं देख रहा हूँ नेपाल से भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी भाई बहनों का और मंच पर विराजित हमारे महानुभावों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे सबका स्वागत करने के लिए आप सभी का भी सहयोग चाहिए। सहयोग देंगे? कौन सा सहयोग चाहिए? तालियां बजाने का, है ना? तो ताली बजाने में आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि ताली बजाने से फायदा बहुत होता है। देखो, तीन फायदा तो प्रैक्टिकल में आपको बताना चाहूँगा कि ताली बजाने से एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, और दूसरा क्या होता है, खुशी होती है, और तीसरा सोशल सर्विस भी हो जाती है, सामाजिक सेवा, पड़ोस वाले भी जग जाते हैं। तो इसलिए ताली बजाने में हमें कंजूसी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम किसका स्वागत करेंगे? कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, किसका हम आह्वान करते हैं? परम पिता परमात्मा का। तो जोरदार ताली बजा करके शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का हम लोग आह्वान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनके ही आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से ये जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत ही सुंदर रीति से सफल होगा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद मंच पर विराजित आप सभी देख रहे हैं हमारे सभी महानुभाव, और उसमें भी विशेष में सबसे पहले हमारी जो परम आदरणीय राज्योगिनी आशा दीदी जी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की चेयरपर्सन भी है और ओम शांति रिट्रीट सेंटर है उसके आप डायरेक्टर भी हैं, बहुत ही अनुभवी वक्ता भी है और राजयोग का सालों से अभ्यास करते हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरणाएं दिया है। तो ऐसी हमारी आशा दीदी का हम लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारे बीच कुछ मेहमान जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, विशेष काफी दूर से चल कर के हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं दिल्ली से पधारे हमारे आदरणीय भ्राता मनोज सेठी जी, मनोज सेठी जी का हम लोग जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके साथ साथ हमारे राजस्थान जयपुर से पधारे आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी, वो भी हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर है और हमारी संस्था से उन्हें बहुत प्यार। मैंने अभी सुना, आज भारत भूषण भाई का भी मुझे फोन आया और हमारी एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और कुछ कार्यक्रम और उसमें कुछ साधनों की आवश्यकता है, तो वो बता रहे थे कि हम भ्राता जी के पास गए, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया, दूसरे लोगों को भी फोन करके प्रेरित करके काम करा दिया बाबा का। तो ऐसे हमारे बहुत ही अनुभवी और सहयोगी बाबा के बच्चे, उनके लिए तो हमें जोरदार ताली बजानी ही चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी। और साथ ही हमारे बीच जो बैठे हैं आदरणीय भ्राता प्रेम सुख बिश्नोई जी, वो भी हमारे बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर है, जयपुर से पधारे हैं। एक दो महीने पहले वो आबू की मुलाकात पर आए थे और नीचे शांतिवन में मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटर की हम लोग एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ज्ञान सरोवर में, आपको जरूर आना है। तभी उन्होंने यस कर दिया था, कहते मैं जरूर आऊंगा, न केवल मैं लेकिन मेरी फैमिली को भी लेके आऊंगा। और साथ में फैमिली लेकर के भी आए हैं, आराम से 3 दिन 4 दिन रहेंगे और अपना अनुभव भी सुनाएंगे कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सफल होना हो तो स्वशासन की जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे बीच बैठे हैं हमारी परम आदरणीय राज्योगिनी अवधेश दीदी जी, जो कि भोपाल जोन की ये डायरेक्टर है, जोनल इंचार्ज है, और उनके अंडर में आप नहीं मानेंगे 100 से भी ज्यादा सेवा केंद्र, हजारों गीता पाठशालाएं और कई भाई बहने ज्ञान में चलते हैं और उन्होंने सबको आध्यात्मिक प्रेरणाएं दिया है अपने जीवन से। एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग के अब नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। जोरदार ताली बजा करके हमारी आदरणीय अवधेश दीदी जी का भी हम स्वागत करें। साथ ही साथ बाजू में बैठे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी पूनम दीदी, जो राजस्थान जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर है और साथ साथ में राजस्थान में जो जयपुर सब जोन है ब्रह्मा कुमारी का, उनके अंडर में भी 100 से ज्यादा सेंटर चलते हैं और कई भाई बहनों को उन्होंने भी अपनी जीवन के द्वारा प्रेरणाएं देकर के बाबा के बच्चे बनाए, जीवन में पॉजिटिव चेंज लाया है। जोरदार ताली बजाइए हमारे पूनम दीदी जी के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ बैठे आदरणीय भ्राता शैलेश भाई जी, जब से इस विंग की एक्टिविटी शुरू हुई है, 30 साल से ये विंग कार्य कर रही है, तब से लेकर के आप जुड़े हुए हैं और बहुत ही निर्माण नम्रचित है, सेवा भाव है, उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे। और साथ ही जो इस मंच का बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली हमारी आदरणीय राधा दीदी, जो कि उत्तर प्रदेश की जोनल कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग की, और उनके अंडर में भी काफी सेंटर्स चलते हैं और काफी साल से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो ऐसी हमारी अनुभवी राधा दीदी का भी हम लोग बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी भाई बहने जो इतने दूर से आए हैं, भारत से भी आए, नेपाल से भी आए और इतना कष्ट लेकर के आए, लेकिन यहाँ आकर के आपको सुकून महसूस हुआ होगा, यहाँ आकर के आपको सुकून महसूस हुआ, थकान उतरी, माउंट आबू ये ज्ञान सरोवर का इतना अच्छा पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण में जो रहने का मौका मिला है वो भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। जैसे हमारी राधा दीदी कह रही थी, कईयों ने रिजर्वेशन कराया होगा और मेरे पास 470 गेस्ट के नाम आए थे। और जब हमने पूछा अभी एकोमोडेशन में कि कितने भाई बहन पहुंचे, कहते 300 के करीब भाई बहन पहुंचे हैं। तो आप वही लकी भाई बहन है जो यहां तक पहुंच पाए हैं और अपना भाग्य ही है। कहते हैं ना भाई, भगवान के घर आने से क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, भगवान के घर आने से तो किस्मत ही बदल जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपका 3-4 दिन का जो स्टे है उसमें आप लोग बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, शांति का भी अनुभव करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे, मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मंच से नीचे भी कुछ अच्छे अधिकारी बैठे हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। भोपाल से खास हमारे बीच में पधारे अवधेश प्रताप सिंह जी, थोड़ा खड़े हो जाइए, लोगों को दर्शन दीजिए। ये विधानसभा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी में प्रेजेंट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली बजाइए। ये एमपी के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय भ्राता सीताराम मीना जी बैठे हैं, वो भी बहुत ही सीनियर, अभी रिटायर्ड है। खड़े हो जाइए, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक हमारे आदरणीय भ्राता आलोक अवस्थी जी, ये भी सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ये आईएएस ऑफिसरों का जैसे एक मीटिंग हो रहा है, मिलन हो रहा है, और ऐसे ही ग्वालियर से एक हमारे आईएएस पधारे हैं, आदरणीय भ्राता ब्रिज भूषण शर्मा जी, कहाँ बैठे हैं, हाँ खड़े हो जाइए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। प्लस हमारे नेपाल से जो गेस्ट आए दो, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखो कितना दूर से, महेंद्र नगर से हमारे बीच पधारे हैं। और ऐसे ही भारत के भी अलग अलग स्थानों से भी बहुत अच्छे अधिकारी गण आए हैं, क्योंकि ये अधिकारियों की मीटिंग कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, रिट्रीट कहो है, तो मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन चारों तरफ से, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, हर जगह से, उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से भी हो, तो आप सभी इतने दूर दूर से पधारे हैं, आप सब एक बार जोरदार अपने लिए ही ताली बजाइए, खुशी से बजाइए, खुशी से बजाइए। और एक ताली बनती है आपको यहां तक पहुंचाने वाले जो बीके गाइड भाई बहन है ना, जो आपको यहां तक पहुंचाया, एक बार ताली बजाओ उनके लिए, है ना, उन्होंने कितनी मेहनत करके आपको निमंत्रण दिया, सस्ने आपने स्वीकार किया, यहां तक पहुंचाया हमारे बीके भाई बहनों ने। और खास इस प्रोग्राम के लिए, सेवा के लिए भी हमारे विंग के भाई बहने भी आए हैं, और खास 3 जगह से हमारे सेवाधारी आए, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि भोपाल से पधारे हैं सेवाधारी, और मुलुंद मुंबई से पधारे हैं, और राजकोट से पधारे हैं, तो टोटल 60 भाई बहने आप सबकी सेवा के लिए आए हैं, तो उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे ज्ञान सरोवर में जो भाई बहने आप सबकी इतनी अच्छी सेवा कर रहे, चाहे एकोमोडेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे भोजन हो, आप सबको यहाँ का भोजन भी अच्छा लग रहा है ना, तो उन लोगों के लिए भी ताली बजाइए, स्वागत भी कीजिए, अभिनंदन भी कीजिए और धन्यवाद भी कीजिए। तो हमारा ये कार्यक्रम रखने का लक्ष्य तो यही है, शॉर्ट में बताऊं कि जो हमारा ये बताया गया है मुख्य टॉपिक, सफल प्रशासन की कुंजी स्वशासन, क्योंकि आप सभी प्रशासन का कारोबार संभालते हैं, ऑफिस का भी कारोबार संभालते हैं, कई कंपनीज का भी कारोबार संभालते हैं, और घर का भी कारोबार हमें संभालना ही पड़ता है। तो ऐसे प्रशासन में जो हम लोग सभी, हम लोगों को भी यहाँ प्रशासन का कारोबार करना ही होता है, लेकिन यहाँ हमें सिखाया जाता है कि जितना हम स्वयं पर शासन करने की कला सीख लेते हैं ना, तो ये दूसरा कारोबार है वो सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सफल हो जाता है, और सबके साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। मुझे हमारी दादी प्रकाशमणि जी याद आ रही है, वो हमेशा कहती थी कि दादी कहती है कि आप मुझे मुख्य प्रशासिका कहते हो, लेकिन प्रशासिका मैं बाद में हूं, पहले तो मैं स्वशासिका हूं, मैं स्वयं पर शासन करने की कला पहले सीखती हूं, उसके बाद हम प्रशासन में आवे। तो यहाँ का जो प्रशासन आप सभी देख रहे, और भी 3 दिन 4 दिन आप लोग देखेंगे कि कितना स्मूथली प्रशासन चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, और किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, इशारों से चलता है। तो ऐसा हम कैसे सीख के जावे, क्योंकि हमें भी घर में जाके ऑफिस में जाके कहीं ना कहीं शासन का कार्य प्रशासन का कार्य करना ही है। तो ऐसी जीवन जीने की कला या प्रशासन में सफलता पाने की कला की कुंजी जो है वो यहाँ से हम लेकर जाएंगे, और ये हमारा 3 दिन का ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। और दूसरा भी ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमने प्रोग्राम जो डिजाइन किया है वो भी आपने देखा होगा, 3 दिन का आज हमारा उद्घाटन का सत्र है, लेकिन 2 दिन इतने अच्छे टॉपिक पर आपको अलग अलग ऐसे अनुभवी वक्ता इतना अच्छा ज्ञान सुनाएंगे जो आपको लगेगा कि ये हमारे जीवन में धारण करने लायक है। और ये थोड़ा भी ज्ञान अगर हम अपने जीवन में धारण करते हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आता है। मेडिटेशन सीखने से बहुत फायदा होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि हमारा जीवन ही वैल्यू बेस्ड लाइफ हो जाता है और वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मैं तो यही शुभ भावना शुभकामना रखूंगा कि आप लोग इतना दूर से इतना खर्च करके इतना समय निकाल के आए, तो पूरे 3 दिन का जो भी शेड्यूल आपको मिला है उसी शेड्यूल के अनुसार आप टाइम टेबल के अनुसार आप यहाँ पहुंचेंगे और पूरा प्रोग्राम का लाभ उठाएंगे। आप सभी का फिर से दिल से बहुत बहुत दिल से हमें बहुत खुशी है, क्योंकि आप सभी मेहमान हमारे बाबा के घर पर आ रहे हैं, आप सबका फिर से बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, थैंक्स है, धन्यवाद।
हम सबका दिल से जो स्वागत किया, एक बार हरीश भाई के लिए भी हम ताली बजा करके स्वागत करना चाहेंगे, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अर्जुन धनुर्धारी था, द्रोणाचार्य का नंबर 1 स्टूडेंट, सारे कलाओं में निपुण, सारी योग्यताओं को जानने वाला युवा, सब कुछ उसके पास था। जब कर्म क्षेत्र रूपी युद्ध क्षेत्र में उतरकर जब युद्ध करने की बात आती है, जिन कलाओं को जिन योग्यताओं की तालीम उन्होंने पाया था उसको प्रयोग करने का जब समय आता है तब अधीर्य हो जाता, असंभव कहने लगता। तब भगवान ने पूरा 18 अध्याय का ज्ञान देना पड़ा, कहा योग कर्मश्य कौशलम, ये योग तुम्हें कर्म की कुशलता, कर्म से भागना, कर्म से विमुख होना एक क्षत्रिय की निशानी नहीं। जिन योग्यताओं को कलाओं को स्किल्स को आपने जो पढ़ा है उसको प्रयोग करने का ये समय है, तो वो है युद्ध क्षेत्र रूपी कर्म क्षेत्र, इसमें हम कैसे सफल हो। तब भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, राज्य योग, दृष्टि योग, भिन्न भिन्न योगों की परिभाषाएं समझाते हुए, अर्जुन मन से जीते जीत है, मन से हारे हार है, तुम अपने मन को जीतना सीखो, अपने आप के ऊपर विजय पाओ। तो ऐसा एक संदेश इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप सबको दिया जाएगा, कैसे हम स्व के ऊपर शासन, सब पे तो बहुत आसानी से किया जा सकता, मेरा कोई सुनता नहीं, मेरा कोई समझता नहीं है, मेरा कोई करता नहीं, ये सबकी शिकायत है। अब मेरा न सुनता है, समझता है, करता है, ये अपने आप से पूछो, क्या अंतर आत्मा की आवाज को मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, कर रही हूँ। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे बीच में की नोट स्पीकर के रूप में आदरणीय श्रद्धेय पूनम दीदी जी। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है आंख खुलते ही प्रभु को देखना, प्रभु की पालना में पलने का सौभाग्य हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी को प्राप्त हुआ है। बचपन से ही आपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान को प्राप्त कर प्रभु की छत्र छाये में अपने जीवन को व्यतीत किया। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने पूरे राजस्थान से सेवाएं करके 100 के करीब सेवा केंद्रों का संचालन करती है। सैकड़ों बहनों का आप अपने जीवन को सदा संजोया है और लाखों लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आप निमित्त बनी है। ऐसे महान विभूति से मैं निवेदन करूंगी, आपको स्पेशली 2-3 अवार्ड्स में बताऊंगी। माई इंडिया ग्रीन इंडिया के लिए 2019 में ऑर्गेनाइजर तथा प्रथम स्थान पाने के लिए अवार्ड प्राप्त हो गया। 50 वर्षों की आप सेवाओं को देखते हुए राजस्थान गौरव का अवार्ड आपको मिला हुआ है। 250 ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए आपने विशेष सभी बहनों को एजुकेशन, इनकी माँ की तरह इनकी पालना करने वाली ऐसी बहन जिसके लिए 2022 में वर्ल्ड बेस्ट मदर का अवार्ड आपको मिला हुआ है। हेल्थ फॉर हैप्पीनेस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सलेंस आपने प्राप्त किया है। जून 23 में वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड द्वारा राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड को नवाजा है। ऐसी महान विभूति से मैं निवेदन करूंगी की नोट स्पीच आज के सब्जेक्ट को लेकर के हम सबके बीच में रखे आदरणीय श्रद्धेय पूनम देवी।
ओम शांति। जगत नियंता विश्व रचयिता के आप सर्वश्रेष्ठ रचना जो परमात्म सहयोगी हैं, विश्व को नियंत्रित रखने संचालन का भार उठाए हुए हैं, जिम्मेवार हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और मंच पर उपस्थित हमारे विद्वान जन, अनुभवी वक्तागण, महानुभावों, आपका हृदय से सम्मान है, सत्कार है। विषय आपके सामने है और आप स्वयं प्रशासक या दूसरा नाम कहें राजा हैं। अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेवार हैं, राजा हैं और अपने विभाग का चाहे अपने कार्यस्थल का व्यवस्था नियंत्रण संचालन करते हैं और वहां की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन औरों पर शासन करना, औरों को नियंत्रित रखना, उनसे कार्य लेना, ये अपने आप में सहज नहीं है। उसके लिए कुछ विशेषताओं को स्वयं में उभारना होगा, क्योंकि ये कार्य ऐसा है जहां आपका अपने से बड़ों से भी संपर्क होता है, अपने से छोटों से भी होता है और साथियों के साथ भी होता है व्यवहार, तो वहां अनेक समस्याएं भी आती हैं, तनाव भी होते हैं और सबको खुश रखना, संतुष्ट रखना एक कठिन कार्य होता है। ऐसे समय में आप चाहते हैं क्या किया जाए, तो सबसे अधिक यहां आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, आपके विशेष आंतरिक गुण जिनके आधार से आप अपने समस्या का समाधान भी कर लेते हैं, सरलता पूर्वक प्रशासन भी हो जाता है। तो हम स्वयं के पहले राजा बने, औरों पर शासन करने से पहले अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं की मर्यादा, नियम, अनुशासन, इसका अवश्य ध्यान रखें। अब मैं स्व पर शासन की जब बात कहती, स्व पर शासन तो स्वयं को जानो, मैं कौन हूं, मैं स्वयं क्या केवल मात्र पंच तत्वों का भौतिक शरीर या इसकी चैतन्य शक्ति ऊर्जा जिसको आत्मा कहें, स्प्रिट कहें, ये ज्ञान महत्वपूर्ण है। स्व को जानना, मैं नश्वर शरीर नहीं, भौतिक देह नहीं, लेकिन मैं एक चैतन्य ऊर्जावान दिव्य आत्मा हूं। तो जब हम आत्मज्ञान समझ जाते हैं और दूसरों को भी आत्मभाव से देखते हैं तो हमारा भय का शासन नहीं, हमारा ऑर्डर का रूप नहीं, लेकिन वहां आत्मिक प्रेम, आत्मीयता, आत्मिक स्नेह, शुभ भावना पैदा होती है। हम देखेंगे कि शासन पहले जब हमें स्वयं पर करना है तो शरीर हमारा एक महत्वपूर्ण साधन है और इसकी साधक मैं आत्मा हूं। तो शरीर पे नियंत्रण अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, जितना अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, इंद्रियां हमारी संयमित कंट्रोल में काम करेंगी, उतना हम काफी कुछ अपनी समस्याओं को किनारे कर पाएंगे। उदाहरण के लिए पांच इंद्रियां हम जानते हैं, आंख इंद्री, कान इंद्री, स्वाद इंद्री, स्पर्श इंद्री, ये सब इंद्रियां शब्द इंद्री। अब आप देखिए एक गंध इंद्री, स्मेल, इसके गुलाम हो गए ना, तो जैसे भंवरा फूल पे आता है, फूल का रस लेता है, संध्या होती है, वो भूल जाता है संध्या हो गई और ये बंद हो जाएगा और भंवरा उसमें कैद हो जाता है और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो यहां गंध इंद्री के वशीभूत हुआ और विवेक खो दिया कि अब इसके बाद क्या होगा, ज्ञान नहीं तो निर्णय नहीं ले पाता और जीवन लीला खत्म। एक और उदाहरण बस देती हूं स्वाद इंद्री का। तालाब में मछुआरा दाने डालता है, मछलियां एकत्रित होती हैं स्वाद के लिए और सब मछलियां उस दाने के लालच में आ जाती हैं और मछुआरा जाल डाल के निकाल लेता है और जाके बाजार में बेच देता है। तो यहां स्वाद इंद्री की गुलामी और मछुआरे का लालच जिसने उनकी जीवन को खत्म कर दिया। इसी तरह पांचों इंद्रियां हैं, तो हम भी स्वयं के राजा बने, स्व पर नियंत्रण बनाए रखें, उसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का अनुशासन, इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भी लोभ लालच में आके, स्वाद में फंस के कितना गलत राह पर चले जाते हैं। ये प्रलोभन, ये स्वार्थ हमें स्व पर कंट्रोल नहीं बनाने देता, तो लोगों पर हम क्या नियंत्रण करेंगे, कैसे हम उनको सत्य की, धर्म की राह पर लाएंगे। वो भी लोभ लालच में, प्रलोभन में, स्वाद में कई अनैतिक कार्य भी कर जाते हैं, कई अमानना भी कर जाते हैं, अवज्ञा भी कर जाते हैं। तो आवश्यकता है स्वयं के इंद्रियों पर शासन हो, स्व के राजा। शरीर हमारा साधन, तो साधन पर हमारा नियंत्रण। मैं आत्मा साधक हूँ, राजा हूँ, और इंद्रियां मेरी सबऑर्डिनेट हैं, कर्मचारी हैं। मैं इनको लॉ एंड ऑर्डर में रखूं, जैसा चाहूं वैसा चलाऊं। अब इन पांच इंद्रियों के अलावा जिन पर मुझे रूल करना है, शासन करना है, मैं आत्मा राजा। आत्मा की तीन शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार। मन पर क्या हमारा कंट्रोल है? कितना वेस्ट थॉट्स आते, नेगेटिव आते, बैड थॉट्स, गलत विचार आते हैं, और ये हमारी मानसिक शक्ति को खत्म करते हैं, और निर्णय शक्ति भी प्रभावित होती है, मनोबल भी गिरता है, आत्मविश्वास भी कम होता है। तो कैसे हम अपनी विल पावर से सुंदर शासन कर पाएंगे, कैसे हम औरों को व्यवस्था दे पाएंगे? तो कंट्रोल क्या है? पहले स्वयं पर नियंत्रण, कंट्रोल, अपने विचारों पर कंट्रोल। हमारे विचार हम चेक करें, अकेले में हैं तो हम कैसे विचारों में रहते हैं, गलत, नेगेटिव, बुरे, या बहुत ज्यादा लो एनर्जी वाले ऐसे विचारों में है। हम दूसरों के लिए भी कैसे विचार मन में ला रहे हैं, ये तो ऐसा है, तो गलत है, इसमें तो ऐसी कमियां हैं। ठीक है, हमने अकेले में सोचा, अपने मन में सोचा, लेकिन वो स्वयं पर विचारों पे नियंत्रण नहीं है, तो बोल पर भी नियंत्रण नहीं रहता। अकेले में विचारों पर कंट्रोल और पब्लिक में बोल पर हमारा कंट्रोल, शासन, नियंत्रण हो। बोल कई बार हम कह देते हैं कि बोलना नहीं चाहते थे, बोल गया, जवान फिसल गई। क्यों फिसली? क्यों सामने वाले को हमने हर्ट किया? क्योंकि हमने सोचा है, वो विचार थे, तो हमारा वाणी में भी प्रभाव आया। तो वाणी पर हमारा कंट्रोल, संयम, हम उस पर शासन करें। और पब्लिकली व्यवहार पर हमारा कंट्रोल, हमारा व्यवहार, हमारे साथी, जूनियर, सीनियर सब देखते हैं और उन पर प्रभाव आता है। जब वो देखते हैं ये हमारा ऑफिसर, बॉस, सत्य, न्याय, और सिद्धांतों पे चलता है और इसमें बहुत अनुशासन है। समय पे ऑफिस आना, पूरा कार्य करना, लंच आवर्स में भी नो गॉसिप, नो मोबाइल, बहुत ज्यादा ये कार्य पर ध्यान रखता है, कर्तव्य निष्ठ है, तो प्रभाव तो उसका आएगा ही ना कार्य क्षेत्र पर। फिर हमारा भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाएं बहुत खुशी में हम कई बार अपनी भावनाओं को अनियंत्रित कर देते हैं और हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं अति खुशी में आके। क्रोध पे नियंत्रण नहीं है तो हमारे फैसले कई बार गलत हो जाते हैं, परिणाम ठीक नहीं रहता है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण जितना होगा उतना हम स्वयं पर कहें शासन करने योग्य हैं, तो दूसरों पर भी शासन कर सकेंगे। ये है सेल्फ कंट्रोल। जब ऊंची उड़ान है तो अभिमान ने थोड़ा सब्र रखो, नीचे भी आ सकते हैं। नीचे आ रहे हैं तो धैर्य की आवश्यकता है, ये सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप करना है। राजा रॉयल होता है और रॉयल आत्मा उसके मन वाणी कर्म में रॉयलिटी, उसमें कोई किसी तरह की अराजकता, अश्लीलता, अनैतिकता कुछ भी नहीं होगी। रॉयल आत्मा है तो राजा भी तो रॉयल है। रॉयलिटी, डिविनिटी, दिव्यता विशेष गुण है। अब ये दिव्य गुण जो आत्मा के मूल गुण है, शांति, प्रेम, पवित्रता, आप ये राजयोग सत्र में सीखेंगे और इनको कैसे डेवलप करें आंतरिक गुणों को, वो विधि आपको बताई जाएगी और ये गुण आपकी पावर बनेंगे, शक्ति बनेंगे और ये आपका ऑरा बिल्डअप करेंगे। जितना इन गुणों को आप डेवलप करते हैं आपका ऑरा बिल्डअप होता है, आपके वाइब्रेशन स्ट्रांग होते हैं और बहुत सारी चीजें आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से सुगम कर लेते हैं, क्योंकि आपका ऑरा है, आप में ऊर्जा है, आपका व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व है जिससे आप लोगों के दिल पे छाप छोड़ते हैं, दिल का शासन। तो स्वशासन, सुंदर शासन, सुशासन, सुसुंदर और स्वयं पर भी हो और जो जिम्मेदारी मिली है उस पर भी हम खरे उतरें। तो ये कला अध्यात्म से आती है और इसमें राजयोग की प्रैक्टिस हमें बहुत सहयोग देती है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, बहुत सुंदर मैग्नेटिक पर्सनालिटी को कैसे हम डेवलप करें इसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, कैसे स्पिरिचुअलिटी को, इनर वैल्यूज को डेवलप करते हुए। एक पर्सनालिटी होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल पर्सनालिटी। तो इंटरनल पर्सनालिटी वैल्यू बेस्ड जिसके द्वारा हमारे आसपास में ओरा का निर्माण होता है, किन चीजों को राज्यों के माध्यम से डेवलप कैसे करें, आदरणीय दीदी जी ने हमको प्रकाश डाला। क्योंकि यहाँ जो सिखाया जाता है ही राजा बनाने वाला, किसी और पे नहीं, अपने आप के ऊपर हम राजा कैसे बने। दिल से फिर से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए, ग्रीटिंग्स देने के लिए। मैं मिस्टर प्रेम सुख बिश्नोई जी IAS, जो हमारे बीच में खास राजस्थान जयपुर से चल करके आए हैं। आप डायरेक्टर फिशर एंड एडिशनल चार्ज ऑफ कमिश्नर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ जयपुर, ज्वाइंट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 92 से आप इन कैपेसिटीज रेंजिंग ऑफ SDM इन ज्वाइंट सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सर्व्ड इन डिपार्टमेंट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एजुकेशन, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, लॉ एंड जस्टिस। भिन्न भिन्न सेवा के क्षेत्र में रह करके आपने अपना अनुभव जो प्राप्त किया है हमारे बीच में, अपने ग्रीटिंग्स देने के लिए मैं मिस्टर प्रेम सुख बिश्नोई जी से निवेदन करती हूँ, आप अपने विचार व्यक्त करिएगा।
ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी BK आशा दीदी जी, जो कि हमारी चेयरपर्सन है एडमिनिस्ट्रेशन विंग की, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मनोज सेठी सर, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे अपने डॉक्टर KK पाठक सर, जो राजस्थान सरकार में सेक्रेटरी हैं, राजयोगिनी BK अवधेश दीदी जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग की भोपाल की, और हमारे अपने पार्टिसिपेंट्स में सबसे लोकप्रिय BK हरीश भाई जी, राजयोगिनी BK पूनम दीदी जी, जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं जयपुर की, और BK शैलेश जी, BK राधा जी, और इस ज्ञान सरोवर में उपस्थित तमाम वंडरफुल सोल्स, पावरफुल सोल्स, लक्की सोल्स, आई वुड से लकी है ना, हम कि नहीं है, हम यहां हैं, इन विभूतियों के बीच मौजूद हैं, इस पवित्र ज्ञान सरोवर में उपस्थित हैं, जो दिव्य ऊर्जा से लबरेज है ये पूरा प्रांगण, पूरा परिवेश, ये तो हम सबने महसूस किया ही है जब से आए हैं। तो इस रूप में हम सौभाग्यशाली पाते हैं अपने आप को, और मैं व्यक्तिशः बहुत ही सौभाग्य मानता हूं आप सबको यहां पधारने पर, शुभकामना देता हूं, शुभेच्छा देता हूं कि आप यहां पधारे हैं तो अपनी आत्म उत्थान की दिशा में अवश्य ही प्रगति करेंगे, और प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, उनके लिए योग, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मोत्थान उतना आवश्यक, इतना अधिक आवश्यक है, क्योंकि उनके निर्णयों से बहुत से लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं। आत्मअनुशासन तो प्रत्येक व्यक्ति मात्र को चाहिए, मगर प्रशासक को उससे भी और ज्यादा चाहिए, इसलिए क्योंकि वे बहुत ज्यादा, उनकी निर्णयों से लोगों के जीवन में अंतर आता है। जैसा राधा दीदी जी ने कहा, योग कर्मशु कौशलम, योग से ही कर्म की कुशलता आती है। वो कैसे, फिर पुनः कहा है, योगा चित्तवृत्ति निरोध, वही बात जो पूनम बहन कह रही थी। चित्तवृत्ति निरोध से मतलब है कि हम इस बात को रियलाइज करें साधना के जरिए, इन विभूतियों के वचनों को सुनकर योग साधना करके, योग पूरे विश्व में अब तो एक स्वीकृत वो हो गया है, विशेषकर राजयोग, कि आत्म उत्थान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये जो है एक बहुत प्रभावी माध्यम है। निरंतर यदि हम साधना करेंगे तो हम अवश्य ही अपनी कॉन्शियसनेस को उस उच्च स्तर तक ले जा सकेंगे जहां हम आत्मनियंत्रण अपने आप पर एक्सरसाइज कर सकेंगे। मैं अधिक बात नहीं कहता हुआ, हाँ एक बात ये कहना चाह रहा था मैं कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में करीब 10,000 के आसपास रिट्रीट सेंटर्स चला रहे हैं, विदेश में 137 के देशों में रिट्रीट सेंटर्स चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ में, विभिन्न राज देशों की सरकारों के साथ में मिलकर के, और विभिन्न प्रकार की इतनी प्रकार की एक्टिविटीज, सैकड़ों प्रकार की एक्टिविटीज, ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे सरकारी हायरार्की, चाहे प्राइवेट में कॉरपोरेट्स में हायरार्की है, वैसा भी कुछ नहीं है, यहाँ तो सब लोग अपने मनोयोग से लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेशन का। ये मेरे ख्याल से विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ तरीके से ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही संस्था है। और हम लोगों को आपने अवसर दिया यहाँ और इस तरह का एक नोट कंसेप्चुलाइज किया, इस तरह की एक वर्कशॉप होनी चाहिए। ये ब्रह्मा कुमारीज ने अपनी सब्सिडरी जो आपकी संस्थान है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, तो उसके तत्वावधान में आपने ये वर्कशॉप सेमिनार व्हाटएवर आमंत्रित किया है। इस विचार को लाने वाले आपके इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं साधुवाद देता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और हमारे सनातन साहित्य की चार पंक्तियों से अपनी बात को विराम दूंगा। वो कहा है, पूर्णात् पूर्णमादाय, that which is complete, purnamidam, this is also complete, purnashya purnamadaya, this is that, purnashya purnamadaya, purnat purnamudichyate, that is, though this is that, but still, purnameva vashishyate, this is already complete. This realization comes through Raja Yoga, and once this becomes our experiential reality, then there is no looking back. This is my understanding. I hope we'll get and practice. Thank you so much for giving me this opportunity.
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर प्रेम सुख बिश्नोई जी, अपने योग के अनुभवों को हमारे बीच में रखकर, एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से अपने फील्ड में जो कैसे योग को यूज किया जाए, इसके लिए विशेष आपने प्रकाश डाला। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इनॉग्रल सेरेमनी बाय लाइटनिंग ऑफ लैम्प्स, हम दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन करेंगे। दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम होगा। मंच पर उपस्थित मंच की शोभा, इन सब से मैं निवेदन करूंगी। आप सामने सन्मुख आ करके दीप प्रज्वलन करके हर एक मानव मन के तमस को मिटाने का काम करें और सभा के बीच में भी हमारे विशेष महानुभव उपस्थित है उनसे भी मैं निवेदन करूंगी आप आ करके दीप प्रज्वलन में अपना साथ निभाएंगे। सभा में बैठे हुए ब्रदर अवधेश प्रताप सिंह जी, ब्रदर सीताराम मीना जी, ब्रदर अलोक अवस्थी जी, अधीर दास गुड़गांव से, मधुसूदन भाई आईपीएस डीआईजी ओआरसी से, ब्रिजभूषण शर्मा जी ग्वालियर से, हेमराज सूर्यवंशी एडवाइजर भारत सरकार भोपाल से, ब्रदर फ्रॉम नेपाल गोपाल आरएल जी, ब्रदर यज्ञराज जोशी जी नेपाल से है, ब्रिजमोहन ब्रिज क्या है ओडिशा से भी है, ब्रदर विजय जी ओडिशा से, उनसे भी निवेदन है। हमारी बीके बहनें उर्मिल बहन, मधु बहन, लीना बहन, सरला बहन, रीना बहन, गीता रानी बहन, नथुमल भाई, विदात्री बहन, ख्याति बहन, हुसैन बहन, उन सब से भी निवेदन है जरूर इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में अपना अपना सहभागिता व्यक्त करेंगे।
शुभ संकल्पों के दीप
अपने अपने मोबाइल की बैटरी को ऑन करिएगा, लाइट ऑन करिएगा, मोबाइल की लाइट को ऑन करेंगे तो बहुत सुंदर सभा दिखाई देगी। जैसे ये दिए जलाए जा रहे आपके हाथ में भी एक एक दिया है जो आप सभी अपने सहभागिता को व्यक्त कर पाएंगे।
होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा, होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, लग रहा है साकार में वो निराकारी दुनिया उतर आई है। सब सितारे सितारे, जैसे भाई जी ने कहा ना, आप सभी लकी स्टार्स हो, आप सब के हाथ में स्टार चमक रहे हैं, तो पूरी सभा लकी स्टार्स से गूंज रही है। तो ऐसे महान भाग्यशाली लकी स्टार्स को फिर से मैं दिल से धन्यवाद देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ रहे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मनोज सेठी जी, ICAS ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से हमारे बीच में पधारे। श्री मनोज सेठी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड पर्सनली वर्किंग एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर इन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ही बिलोंग्स टू 1993 बैच ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ही हैज सर्व इन वेरियस मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। He has a wide experience of financial management functions like electricity distribution, water supply, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ मेडिकल सर्विस एजुकेशन प्रॉपर्टी टैक्स हॉर्टिकल्चर ए मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम ऑफ इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम 2015 टू 2024 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन द कंट्री इन सभी विशेषताओं से संपन्न सेवाओं की अनुभूतियों से संपन्न हमारे मिस्टर मनोज सेठी जी से निवेदन करूंगी आप मंच पर उपस्थित होकर के आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त करिएगा गेस्ट ऑफ ऑनर मनोज सेठी जी
ओम शांति परम आदरणीय आशा दीदी मंच पर उपस्थित पूनम दीदी अवधेश दीदी हरीश भाई जी शैलेश भाई जी और हमारे साथी प्रेमसुख बिश्नोई जी डॉक्टर के पाठक जी और इतनी अच्छे ढंग से मंच का संचालन करने वाली हमारी राधा दीदी और आप सभी जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं और नेपाल से हमारे भाई आए हैं मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार अभिनंदन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सुअवसर मिला ये मेरा तीसरा विजिट है यहाँ का और मैं हर बार बहुत कुछ सीख के जाता हूँ और मैं ये सोच के आया हूँ कि इस बार और बहुत कुछ सीख के जाऊंगा क्योंकि ये हमारी एक जर्नी है और उस जर्नी में हमें ज्ञान जितना हमें हासिल हो सके उतना हमें करते रहना है और मैं आज के जो कॉन्फ्रेंस जो है उसके जो विषय है उसका की वर्ड जो है सेल्फ सॉवरनिटी की टू सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि इस कोर्स में क्या होगा तो वो तो धीरे धीरे पर्थ खुलेगी जैसे जैसे हम लोग आगे एक एक सेशंस को अटेंड करेंगे लेकिन जो मैं थोड़ा इसके बारे में सोच पाया वो ये था कि जैसे हम एक कंट्री के बारे में बात करते हैं कि एक सॉवरन कंट्री प्रभुसत्ता संपन्न देश की हम बात करते हैं वो उस देश को कहा जाता है उस देश को हम सॉवरन कंट्री बोलते हैं जिसका शासन उसकी जनता स्वयं करती है यानी कि वहां पे किसी और से वो कंट्रोल नहीं होता है तो उस देश को हम लोग सॉवरन कंट्री बोलते हैं तो आज हम इस जो समारोह की जो शुभारंभ हुआ है कि हमें अपने आप को कैसे हम सॉवरन रूप से कर सकें कि हमारा जो खुद का शासन है वो किसी और के द्वारा ना होके हमें से शासित हो जो स्वशासित या स्वशासन की बात है तो इसकी धीरे धीरे और जैसे मैंने कहा कुंडलियां और पर्तें खुलेंगी और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे और ये एक बहुत अच्छा विषय है मैं अपने जो 30 साल का जो अनुभव है प्रशासनिक सेवाओं का उसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासनिक सेवाएं हों या किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी स्टेट लेवल या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल की जो संस्थाएं होती हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेजर्स जो उसमें काम करते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है क्योंकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कितने ही लोगों का भविष्य उनके कार्यों से जुड़ा होता है हम देखते हैं कि बहुत सारी सुनने में आता है कि बहुत सारी लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और उन पब्लिक सेवाओं में जो कमी रह जाती है और अगर वो कमी नहीं होती तो वो शायद उन जानों को बचाया जा सकता था तो उसमें हम लोग कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर सकते हैं और कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा एक साइक्लोन आया पूरी दुनिया में उसके बारे में चर्चा हो रही थी और मेरा ये मानना है और आप सभी का भी ये मानना होगा कि जिस ढंग से हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के सभी अधिकारियों ने और हमारी संस्थाओं ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वे में उस साइक्लोन के बारे में लोगों को पहले जो जागरूक किया और उसकी तैयारी की और इवैक्यूएशन हुआ और जिसको हमने सक्सेसफुली हैंडल किया, और जब वो वाकई तूफान आया तो हमें कुछ ऐसा आभास नहीं हुआ कि कोई अनजानी चीज हो गई है, और सब लोग उसके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड थे। तो ये एक उदाहरण है कि हम लोग कैसे एक रिस्पॉन्सिबल एक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उस रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए जो दो बातें आती हैं वो है कि रूल ऑफ लॉ एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो हमारे जितना भी प्रशासन है, शासन है, वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, बट देर इज ए स्पिरिट ऑफ लॉ। तो हमें उस स्पिरिट ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, और कि कानून इतना भी कानूनी तरीके से पालन ना किया जाए कि उसका अर्थ ही बिगड़ जाए, और कानून को बिल्कुल ही पालन ना किया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। और कुछ बातें मैं जैसे आपको कहना चाहूंगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि देर आर टू थिंग्स विच गवर्न्स अ पर्सन, जो दो चीजों की वजह से काम किए जाते हैं, एक स्वार्थ और दूसरा डर, ग्रीड और फियर। आप देखेंगे मोटे तौर पे यही दो चीजों की वजह से काम होते हैं। लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम सब जो लोग आए हैं यहां पे, हमने ये सब सीखना है कि हम बिना ग्रीड और बिना फियर के कैसे काम कर सकते हैं। और वो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका जो तरीका है, वो हमें ज्ञान के माध्यम से, जो हमें राजयोग के माध्यम से, और जो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए जाएंगे, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि हम उसको कर पाएंगे। वही अपने आप में एक स्वशासन की एक सही धारणा देगा हमें। जैसे पूनम दीदी जी बता रही थी कि इंद्रियों के वशीभूत होना या स्वयं पे कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते, उसी तरह से अगर ये एक थ्री स्टेज प्रोसेस है कि पहली स्टेज तो ये है कि जब हम अपने आप के बारे में ये नहीं जानते कि मेरा, मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा इंद्रियों पे वश है या नहीं है, मैं इंद्रियों से वशीभूत हूं या नहीं हूं, तो जैसा हूं वैसा हूं। दूसरी स्टेज वो आती है कि जब मुझे इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में आने के बाद ये एक आभास होता है कि हाँ, मुझे, मैं कौन हूं और मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता हूं, बिकॉज जो मैं देख रहा हूं अपने आप को वो मैं नहीं हूं। तो ये जब आभास होता है तो दैट्स अ बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी। एंड द थर्ड स्टेज इज व्हेन वी रियलाइज फुली कि वाकई हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस है, वो जो लर्निंग है, वो हमें इस चीज को पूरे असली हमारे उद्देश्य की पूर्ति करवाती है। तो ये जो हमारी जर्नी है, कुछ लोगों की आज फर्स्ट जर्नी होगी, कुछ की सेकंड स्टेज की जर्नी होगी, और कुछ हमारे ऐसे भाई होंगे, बहनें होंगी, जिनकी जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, और हम उन सब जो हैं बस मिलके एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस को शेयर करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चीजों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए, और ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा के घर पे हमें बुलाया गया और हम आए। तो पहले तो हमें अपने आप को बधाई देनी है, और हम बहुत स्पेशल अपने आप को समझिए। वी आर सो स्पेशल, एवरीबडी स्पेशल, एंड कीप ए स्माइलिंग फेस ऑल द टाइम, एंड बिकॉज स्माइलिंग फेस attracts the energy and it also dissipate the energy to others also. So inhi shabdon ke saath aapka bahut bahut dhanyawad. Thank you very much.
Bahut bahut dhanyawad. Sir, smiley bana karke pass karne ki zarurat nahi, face ko hi kya karna hai aaj, smiley face ya depend honge wo smiley ke liye, या आप इंतजार करेंगे मुझे भी कोई स्माइली बना करके भेजे, ऐसे तो नहीं है ना? आज इस कैंपस में हमेशा क्या करेंगे, 24 घंटे 24 घंटे आपका स्माइल वाला फेस रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। व्यक्ति के साथ मोह अटैचमेंट होगा, मोह कहलाएगा। धन के साथ मोह लालच कहलाएगा। पोस्ट के साथ मोह होगा, अटैचमेंट होगा तो अहंकार आ जाएगा। व्यक्ति, धन, पोस्ट तीनों ही कहीं न कहीं हमें बांधने वाले हैं। एक पिता परमात्मा जो हमें इन बंधनों से छुड़ाने वाला, जिसको ही राजयोग कहा गया है। तो यही संकल्प संदेश को लेते हुए अभी मैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी, IAS, सेक्रेटरी फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इनसे मैं निवेदन करूंगी। आपका भी बहुत सुंदर अनुभव है, प्रीवियस पोस्टिंग में जिक्र करना चाहूंगी। सेक्रेटरी ऑफ टू चीफ मिनिस्टर आप रहे हुए, कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी टू रूरल डेवलपमेंट, सेक्रेटरी टू वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह करके आपने अपनी सेवाएं दी है। उन्हीं अनुभवों को हमारे बीच में रखने के लिए डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी IAS इनसे निवेदन करूंगी। अपना वक्तव्य हम सबके बीच में रखें।
सम्माननीय मंचस्थगण, अव्यक्त और व्यक्त रूप में विद्यमान बाबा, दादी और दीदी, समस्त भाई बंधु और परिजन, आप सभी को नमन, अभिनंदन और अभिवादन। प्रशासन और अध्यात्म, प्रशासनिक रूप से कोई ऐसी उपलब्धि नहीं, आध्यात्मिक रूप से कोई ऐसी सिद्धि नहीं, फिर भी औपचारिकता मंच पर ला देती है। मंच के उजाले बहुतों को संत बना देते हैं, जीवन के अंधेरे बहुतों को दस्यु सिद्ध कर देते। अध्यात्म क्या है? स्वागत हो रहा था, स्वागत के गीत ठीक से अगर भाव मुझे स्मृत रह गए हों तो आपका आपके घर में ही स्वागत है, सत्कार है। अध्यात्म की एक परिभाषा यह भी है, आप अपने घर को पहचान जाएं, अपनी ओर लौट जाएं, यह भी एक अध्यात्म है। युग बदलता है और युग की धर्म बदल जाएंगे, भाषाएं बदल जाएंगी। बहुत बार कई देखा जाए तो जितने भी लोग हैं प्रशासक ही हैं, यहां सिख धर्म की पदावली में कहूं तो सारे के सारे सरदार ही हैं। मैं मध्यमान हूं वय की दृष्टि से देखूं तो, कुछ वृद्ध होंगे, कुछ सेवानिवृत्त होंगे, कुछ आध्यात्मिक रूप से सिद्ध होंगे, कुछ साधक होंगे, सबकी अपनी यात्रा है। भाषाएं बदलती रहती हैं, धर्म का स्वरूप ही कुछ इस तरह का है कि अपने अभिव्यक्ति के लिए नए नए माध्यम तलाशता है। सुनते आए थे कि हर आत्मा को परमात्मा की तलाश है, अपने ढंग से कहूं तो हर एक ब्रह्म कुमारी को प्रजापिता की तलाश है, उसी की संधान की यात्रा में लगी हुई है। एक व्यक्ति कहता है ओम शांति, दूसरा कह सकता है ओम कह ही दिया फिर शांति तो अपने आप आ गई। गुरु नानक से पूछेंगे तो एक ओंकार सतनाम अपने आप से गुंजित हो जाएगा। शब्दों के भेद हैं, ध्यान के मार्ग के लक्ष्य पर भेद नहीं होता, धारणाओं पर भेद होते हैं। भेद न हो तो फिर कोई भक्ति के मार्ग से चला वो भी पहुंच गया, कोई ज्ञान के रास्ते चला वो भी पहुंच गया, कोई कर्म को आधार बनाया वो भी सिद्ध हो गया। विश्नोई जी ने दो शब्द कहे, दो सूक्तियां थी, एक पतंजल योग सूत्र से थी, पहला ही सूत्र है योगश्चित्रवृत्ति निरोध, और दूसरा गीता से उक्ति थी योगः कर्मसु कौशलम्। कृष्ण जब योग की बात करते हैं तो बात थोड़ी भिन्न हो जाती है, जब पतंजलि योग की बात करते हैं तो थोड़ी और भिन्न हो जाती है। कहते हैं पतंजलि की चित्त की वृत्तियां बहुत बार भटकाती हैं, मन बुद्धि अहंकार बार बार ले जाएंगे, और वे निरुद्ध हो जाएं, रुक जाएं, तो समझना कि योग है। और तुम्हारे कर्म की कुशलता आ जाए, जिस दिन कर्म से तुम्हारा डिटैचमेंट हो जाए, तुम कर्तापन का भाव भी न रखो पीछे से और फल की आकांक्षा भी छोड़ दो, तब समझना कि तुम कर्म में कुशल हुए और तब तुम्हारे योग की सिद्धि हुई। पतंजलि के समय तक योग बहुत अस्पष्ट नहीं हो पाया था। राजयोग शब्द का अर्थ ध्यान कम जाता है। प्राणायाम की जब विधा विकसित हुई तो पहली बार किसी ने सोचा कि हमारे श्वास केवल प्राण ही, केवल श्वास केवल वायु नहीं है, कुछ प्राणों से जुड़ा हुआ सेतु है, शरीर और मन दोनों को बड़ा संतुलित कर सकता है। जिन लोगों ने शरीर पर बल दिया कालांतर में, वे हठयोगी बन गए। जिन लोगों ने श्वास पर बल दिया, प्राणायाम की विभिन्न रूपों पर बल दिया, वे लोग स्वरयोगी बन गए। और जिन्होंने सोचा कि फिर मन पर ही नियंत्रण कर लें, पूनम देवी कह रही थी सोपान के साथ चलते चलो, पहले पांच इंद्रियों को देख लो, नियंत्रित कर लो, फिर मन को नियंत्रित कर लो। कठोपनिषद कहता है रथी हैं हम, आत्मा क्या है, रथी है, इंद्रियां अश्व हैं, वे अपनी ओर ले जाती हैं, मन को ले ही जाएंगी, मन का स्वभाव है, चंचल है, ले जाएगा। तो राजयोग कहेगा कि जब मन को ही नियंत्रित कर लें वही श्रेष्ठ, लेकिन सबकी प्रवृत्ति तो वो न होगी। कुछ लोगों को भक्ति ही रुचेगी, कोई कह सकता है कि मीरा ने भक्ति से पाया वो कुछ कमतर पाया होगा, रमण महर्षि ने ज्ञान से पाया वो कुछ कमतर रहा होगा, और रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति से पाया तो वो कुछ भिन्न रहा होगा। भिन्न नहीं हो पाता। बुद्ध अगर ज्ञान की बात करते हैं, महावीर अगर कर्म से चाहते हैं कि पूरी लेश्याएं समाप्त हो जाएं, क्या भिन्न हो जाती हैं बातें? लक्ष्य और गंतव्य सत भी अगर भिन्न हो गया तो अर्थ क्या रहा? एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, मतलब कि एक सत्य है, सभी लोग, जो भी विशेष प्रज्ञ हो गया अपने अपने ढंग से बोलेगा ही। कोई पिता कहकर पुकारेगा परमात्मा को, उसने पिता की दृष्टि से देखा, पालक की दृष्टि से देखा, किसी ने शाक्त से पूछिए, शैव कहेगा पिता है, शाक्त से पूछिए वो कहेगा सृष्टि जन्म रही है, रोज जन्म ले रही है, ये धरती माँ है, ये पूरी सृष्टि माँ है, ये प्रकृति माँ है, वो मातृत्व भाव से ही देखेगा। एक ही बात को कहने की दो विधाएं हैं। अध्यात्म बड़ा गुरुतर है, अपनी ओर लौटना, अपने भीतर प्रवेश करना बड़ा कठिन है। दीदी कह रही थी कि व्यक्तित्व को बोलना चाहिए, अक्सर व्यक्तित्व नहीं बोल पाते। हम सब भी एक ऋतु की तरह हैं। कुछ लोगों के साथ बैठेंगे ऐसा लगेगा कि ग्रीष्म आ गया और पूरे पसीने से तरबतर हो जाएं। कुछ लोग होंगे ही ऐसे जो शरद की तरह हों, जिनके साथ बैठना आपको सिहरा जाए, कुछ के साथ बैठना आपके जीवन में वसंत घोल जाए और आप पूरे के पूरे सभी लोगों की तरफ से उन्मुक्त होकर फूल की तरह से खिल जाएं। कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके साथ बैठना वर्षा की तरह आपको आर्द्र कर जाए। अक्सर जब बोलते हैं तो व्यक्तित्व नहीं बोलता। स्पिरिचुअल रिट्रीट नाम रखा गया है, हर बार आत्मा नहीं बोलती। एक पहले कहीं विज्ञापन सुनता रहता था, आदित्य बिरला ग्रुप का विज्ञापन था, हर्ट एंड बॉडी माइंड एंड सोल मुझ में शक्ति है अनमोल, चार आयाम हैं जीवन के, हृदय का आयाम भी है जो भावनाओं की ओर प्रवाहित ही होगा, तरलित ही होगा, बुद्धि का आयाम है जो थोड़ा प्रखर होगी, चुभने में रस लेगी, विश्लेषण में रस लेगी, तर्क खोजेगी, देह का आयाम है कामनाओं में भटकाएगी, तृष्णाओं में ले जाएगी, ज्ञान सरोवर नाम है, ज्ञान स्वयं में सरोवर बन जाए तो समझिए सार्थक है। किसी ने तीर्थंकर नाम रखा तो तीर्थ बना दिया, जिसने भी पार करा दिया समझिए तीर्थंकर है। सिद्ध की क्या परिभाषा है? परिभाषा ही यही है कि वो सरोवर बन जाता है। उसके पास गए नहीं कि अपने आप उसकी शीतलता, उसकी सुरभि अपने आप प्राप्त होने लगे। कोई सूफी कहानी पढ़ता था, कोई इब्राहिम नाम के संत थे और उन्होंने किसी से ज्ञान लेने के लिए पूछा, कैसे जानूं कि कोई सिद्ध है, किसको गुरु बनाऊं? उन्होंने कहा कि उसके पास जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एक खास प्रकार की सुगंध फैली है, ऐसा लगेगा कि एक दीप्त तेज उसके चारों ओर आभा मंडल विद्यमान है, ऐसा लगेगा कि उसके पास गए कि किसी झील के पास चले गए। कहते हैं वर्षों भटका और बहुत दिनों बाद कहीं सांझ के धुंधलके में जा रहा था तो वैसे ही गंध आई, उस गंध की तरफ बढ़ा, देखा पेड़ के पीछे से वैसी ही दीप्त आभा आ रही है जैसा उस व्यक्ति ने कहा था वर्षों पहले। नजदीक गया तो ऐसा लगा कि फुहारें पड़ी हों, पीछे गया तो देखा ये वही व्यक्ति है जिसने उससे बताया था। उसने कहा अगर आप ही वे सिद्ध थे तो आपने बता क्यों नहीं दिया, इतनी भटकाया क्यों? तो उन्होंने कहा मैं तब भी था, प्यास तुम्हारे भीतर तब नहीं थी। प्यास का होना आवश्यक है, ये तृष्णा सबको नहीं जगती। व्यक्तित्व को बोलना चाहिए। बुद्ध का एक शिष्य था, धर्मोपदेश से जीवन भर उनका साहचर्य प्राप्त कर रहा था, धर्म प्रचार के लिए निकल रहा था। धर्म प्रसार के लिए निकलते समय अचानक पूछ लिया कि शास्ता, शास्ता शब्द जो शासन दे, स्वशासन की बात चल रही थी, कुछ आखिरी उपदेश, कुछ अंतिम बात। बुद्ध ने कहा खूब धर्मोपदेश करना, खूब धर्म प्रचार करना, कभी आवश्यकता पड़े तो शब्दों का भी प्रयोग कर लेना, कभी आवश्यकता पड़े तो शब्दों का प्रयोग कर लेना, हम शब्दों से आतुर हैं। ये शब्द बहुत कुछ बोलते हैं। जब बात आपकी जुबान से बोली जाती है केवल आपके कान तक पहुंच पाती है, जब बात हृदय से बोली जाती है तो आपके हृदय तक पहुंचती है, जब आत्मा से बोली जाती है तो आपके आत्मा का गुंजार बन जाती है। यह निर्भर करता है कि आपने किससे उसे आलोकित किया हुआ है। प्रशासन नीरस विषय है, बड़ा कठिन विषय है, प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं, वो अपना भय प्रलोभन सब लाएगी। कुछ ऐसी भी स्थितियां होंगी जिनमें जिनका ध्यान भी ना जाए। हो सकता है कि जो प्रशासक हो मदिरा न पीता हो, न पीना न पिलाना चाहता हो और मदिरा के ही विभाग में लगा दिया जाए। बिश्नोई जी फिशरीज डिपार्टमेंट के निदेशक हैं, मेरे एक मित्र पीएस थे संयोग से पशुपालन विभाग के ही, वे शाकाहारी थे, सैद्धांतिक रूप से शाकाहारी थे। उन्होंने कहा कि पशुपालन कहने में शर्म आती है, पशु मारण विभाग मान लेना चाहिए। हम शब्द झूठे गढ़ लेते हैं और कई बार उस रास्ते पर चलना पड़ता है। स्वधर्म का सिद्धांत है अपनाना पड़ता है, प्रशासन की अपनी चुनौतियां रहेंगी। अभी संभवतः हरीश भाई ने कहा कि मैंने प्रशासन के पद पर रहते हुए अमुक कुछ कार्य में कुछ सहयोग कर दिया। शोले फिल्म देखी होगी, गब्बर सिंह अपनी सभा में लोगों से कहते हैं कि अगर हमारे गब्बर के ताप से कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ गब्बर। इसकी एवज में हमारे आदमी थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा पैसा लेते हैं तो क्या कोई जुर्म करते हैं? मैं कहता हूं कोई जुर्म नहीं करते। शासन ऐसा ही गब्बर सिंह का चरित्र अख्तियार कर लेता है। आपने पुरानी एटलस साइकिल देखी होगी, उसके कंधे पर एक विश्व का ग्लोब उसके ऊपर विद्यमान है। बहुत सारे विचारक रहे हैं, राजनीति शास्त्र के विचारक रहे हैं। अभी सोवरेनिटी पर सेठी जी बोल रहे थे, सोवरेनिटी राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है। बहुत सारे लोग जो राजनीति शास्त्र में मानते थे कि राजनीति जो राज्य है वो अपने आप में बुराई है, वो नेसेसरी ईविल है, बुराई है, क्योंकि राज्य अपने लिए जीने लगता है। एक हॉब्स नाम का विचारक था, उसने एक लेवियाथन नाम की किताब लिखी थी, दैत्य से तुलना की थी। हम अपने लिए जीने लगते हैं, बहुत बार पता ही नहीं चलता, और कई बार हमारा हट जाना अपने आप में प्रकाश दे जाता है। मैं एक बार कहीं कलेक्टर था और मैं अपने एक मित्र के यहां गया, उनकी बेटी एमबीए कर रही थी। अचानक पूछ लिया कि सर कलेक्टर क्या करते हैं, सोचा नहीं था कभी यह प्रश्न आ जाएगा। फिर सोचने लगा कि मैं सचमुच क्या करता हूं। मेट्रोपॉलिटन में रह रही एक बालिका को प्रशासन की क्या जरूरत है। कुछ चीजों को ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए, कुछ चीजों के अदृश्य होने में ही उसकी सार्थकता है, कुछ चीजों के निरर्थक हो जाने में ही उसकी सार्थकता निहित है। वो समाज सबसे स्वस्थ समाज होगा जहां चिकित्सक की आवश्यकता न रह जाए। वो समाज सबसे नैतिक समाज होगा जहां पुलिस थाने की आवश्यकता न रह जाए, वकील की आवश्यकता न रह जाए, न्यायपालिका की आवश्यकता न रह जाए। वो समाज सबसे स्वावलंबी समाज होगा जहां हम जैसे कलेक्टर की आवश्यकता ही न रह जाए। वो समाज सबसे आध्यात्मिक समाज होगा जहां ठीक ढंग से कहें तो किसी संत की, किसी उपदेशक की, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता न रह जाए। सबसे अच्छा शिष्य कौन है? जो स्वयं अपना शिक्षक बन जाए। और सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? जो जीवन भर छात्र रहने के लिए तैयार हो। बड़ा संकट है, हम सब कच्चे घड़े बनते हैं और अचानक सबको उपदेश देने निकल चलते हैं। मैं एक शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति है ट्वेल्थ नाइट, वो कहती है, उसमें शेक्सपियर कहते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम हैव ग्रेटनेस एंड सम हैव इट थर्स्ट अपॉन देम। कुछ लोग महान जन्म लेते हैं, कुछ महानता अर्जित करते हैं, कुछ पर महानता थोप दी जाती है। हम पर महानता थोप दी गई है। अध्यात्म के जगत में प्रशासन के पदों का क्या लेन देन? अध्यात्म प्रशासक के पदों को देखकर चलती है तो एक त्रुटि है। नहीं, शील को बोलना चाहिए, आचार को बोलना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए कि तुम्हें जब मंच पर बिठाया गया तो तुम उसके पात्र थे या नहीं थे। जीवन में तुमने सचमुच कुछ ऐसा किया था या हमारे चेहरे बता देते हैं। ये चेहरों पर जो झुर्रियां पड़ती हैं वे हमारे ही रूप, हमारी ही चिंतन, हमारी ही सोच के भीतर जो चीजें बैठी हैं उन्हीं की झुर्रियां होती हैं। एक समय के बाद पता चल जाएगा कि हम कुटिल थे या हम सरल थे। हम जब बोलते थे तो हमारे भीतर कोई आत्मा बोलती थी या हमारे भीतर से केवल हमारे शब्द बोलते थे। और अध्यात्म के मंच पर आकर हम ईमानदार न रह पाए फिर कहां पर अपेक्षा की जाए। कोई कहे कि आप ठीक से मुस्कुराते रहिए, मैं कहूंगा कि नहीं, जब इस मुस्कुराहट आए तभी मुस्कुराइए। एक कोई कहानी में पढ़ता था, कोई व्यक्ति मरा, बहुत सारे सिद्ध उसके मरने के बाद आने लगे, लोगों को पता ही नहीं चला कि वो इतना बड़ा सिद्ध संत था। लोगों ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी उस व्यक्ति में, हमने तो कभी जाना ही नहीं, हमारी ही तरह हंसता और रोता था। तो उन सिद्धों ने कहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब वो हंसता था तब वो बिल्कुल हंसता था, जब वो रोता था तब बिल्कुल रोता था। हम झूठे लोग हो गए हैं। अध्यात्म को झूठा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म में जब आपको लगे कि आपकी आत्मा सचमुच आंदोलित होकर उस दिशा में जा रही है तभी जाइए। प्रशासन पर फिर आपकी चर्चा होगी। मैं नीरस उपाख्यान से आपको कहीं वैसे भी 8 बजे समाप्त होना था। हम सभी अक्सर जीवन की विडंबना या त्रासदी ये नहीं है कि वो जल्दी खत्म हो जाती है, बल्कि विडंबना ये है कि हम ही देर से शुरू करते हैं। कई बार हमारा ठीक समय पर डाल छोड़ देना हमें पता ही नहीं चलता, और प्रशासन को सीखना चाहिए। डायोजनीज का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि ग्रेट किसी भी रूप में नहीं थे, बहुत छोटा सा हिस्सा जीता था, लेकिन कहानी सुना दी जाती है कि बहुत दूर तक उन्होंने दुनिया जीत ली थी। मिलने गया, किसी ने कह दिया था कि बड़ा सिद्ध संत है, उससे जाके मिल लेना। सिकंदर वहां पहुंचा तो उसने बत्तियां भी इंगित देने लगी हैं कि अब जाने का विदाई की बेला हो चुकी है। उसने सिकंदर ने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डायोजनीज ने कहा कि आप जैसे लोग अगर चुपचाप यहां से चले जाएं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारा चले जाना ही कई बार सार्थक होता है। कभी आपने गुलमोहर के फूल को देखा है, कभी कचनार के फलों को देखा है, कभी आपने अमलतास के फलों को देखा है। अक्सर नए फल आ जाते हैं, तब भी वो डाल छोड़ने को तत्पर नहीं होते। एक प्रसिद्ध विचारक था फ्रेडरिक नीत्शे, कहा करता था, ठीक समय पर जन्म लो और ठीक समय पर मर जाओ। हम ठीक समय पर डाल छोड़ने ही नहीं जानते। आप आए हैं, दो बातों से बात खत्म करूंगा। मैं आया तो अपने अनुभव साझा कर रही थी। करनाल से आई हमारी एक बहन, घर वापसी थी, हरियाणा के व्यक्ति को खोज रही थी। अब तो खोजना चाहिए था कि जो आत्मा की बात करता है उसे खोज लेना चाहिए था। अभी भी हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति और मेरी भी है, ऐसा मत मान के चलिए मैं उनकी बात करता हूं। ये जो संस्कार हैं, जो चीजें हैं, बहुत दिनों तक जुड़ी रहती है। कह रही थी कि रूल्स से बंधे हैं। रूल्स प्रशासन के लिए होते हैं, अध्यात्म का कोई नियम नहीं बना सकते। अन्यथा कबीर भी पहुंचने को पहुंच जाते हैं और महावीर भी पहुंच जाते हैं, दोनों के बीच में सीधे कोई तंतु नहीं जोड़े जा सकते। प्रशासकों से मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, एक कहानी जो मुझे बहुत प्रिय रही है। जापान में ओकाबू मठ है, वहां बौद्ध धर्म के त्रिपिटक रखे हुए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों का वही महत्व है जो हिंदू धर्म में वेदों का होगा, उपनिषदों का होगा, जो इस्लाम में कुरान का होगा, या जुडाइज्म में या यहूदी धर्म में तोरा का होगा, ईसाइयत में जो बाइबिल का होगा, सिख धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहब का होगा, जैन धर्म में जो अंग उपांग छेदी शास्त्र नंदी शास्त्र का होगा, उन पर जो ग्रंथ लिखे गए उन पर तृतीय संस्करण लिखा हुआ है, उसके पीछे एक कहानी है। तेत्सुगन नाम का एक बौद्ध भिक्षु, उस जमाने में किताबों को छापना बड़ा कठिन कार्य होता था, बड़ा श्रम साध्य था, बड़ा व्यय साध्य था, उसने धनराशि एकत्रित करनी शुरू की। 10 साल तक धन एकत्रित करते रहा, जब तक उसकी पांडुलिपियों को तैयार करने भर के लिए पर्याप्त धन हो पाता। अचानक कोई महामारी आई और उसने सारा धन उनकी दवा दारू पर खर्च कर दिया। अगले 10 साल तक फिर से धन एकत्रित करता रहा, तब तक कोई बड़ा तूफान आया, बड़ी त्रासदी आई और उसने सारा धन लोगों के पुनर्वास पर व्यय कर दिया। अगली बार उसे धन जुटाने में 20 साल लग गए। बहुत बार ग्रंथ के लिए धन दे देना आसान होता है, धर्म के लिए धन देना थोड़ा कठिन हो जाता है। लोगों को विश्वास ही नहीं रह गया था कि यह धर्म ग्रंथ छपवाएगा। संयोग से बड़ी त्रासदी नहीं आई और धर्म ग्रंथ छप गए। जब वे छपे तो उस पर लिखा गया तृतीय संस्करण, और हम कागजों की दुनिया में रहने वाले जीव हैं। कागजों से ही कहानी हमारी जिंदगी शुरू होती है, कागजों पर ही समाप्त हो जाती है। उस पर जब तृतीय संस्करण लिखा गया तो ये भी लिखा गया, जो छपा वो तो धर्म ग्रंथ था, जो नहीं छपा वही धर्म था, जब चुनना हो तो धर्म चुनिए। धन्यवाद।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी, बहुत मनोरंजन तरीके से अध्यात्म के क्लिष्ट सब्जेक्ट को आपने क्लियर किया। आपने एक संकल्प जो दिया कि आने वाला समय ऐसा होना चाहिए, ये ज्ञान सरोवर है, यहाँ पिता परमात्मा ऐसी शिक्षा देते हैं। दो जो सब्जेक्ट आपने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, बहुत क्लिष्ट है, उस क्लिष्ट को सरलता के साथ अभिव्यक्त करना, ये वो सुप्रीम टीचर की विशेषता है। आप सब ने भी पढ़ाई पढ़ी होगी, पढ़ते समय कोई भी कठिन सब्जेक्ट उसको सरल तरीके से जो पढ़ाया होगा, बाकी सारे टीचर्स तो होंगे, लेकिन आपसे मैं पूछो आपके अच्छे बेस्ट टीचर कौन रहे होंगे, आप सबके मन में वो व्यक्ति याद आएगा, वो टीचर याद आएगा, कठिन पे कठिन सब्जेक्ट को सरल तरीके से पढ़ाए। ऐसे ही हमारा सुप्रीम टीचर, जिसको क्लिष्टता, मुश्किल, असंभव आध्यात्मिकता को कहा गया, उस आध्यात्मिकता को इतना सरल तरल बना करके हर मानव मात्र तक पहुंचाने का काम हमारा सुप्रीम टीचर शिव बाबा टीचर बन करके करा रहे, और एक लक्ष्य लेकर के, वही लक्ष्य जहाँ कोई कचहरी नहीं होगी, कहीं हॉस्पिटल नहीं होगा, और ऐसा संसार होगा जिसमें कहीं जेल नहीं होगा, वही सतयुगी दुनिया, एक ऐसा सुंदर समाज लाने के लिए परमात्मा कटिबद्ध है, उस कार्य के लिए आप सभी अवश्य सहयोगी बनेंगे। इसी संकल्प को लेकर सतयुगी नई दुनिया का निर्माण करने के लिए हम सब सहभागी हैं, उनमें से ही हमारे एक उपदेश दे दीजिए। संपूर्णतः अपने जीवन को समर्पित ऐसी यात्रा, पिछले 60 साल की इस आध्यात्मिक यात्रा में चलते हुए आज सैकड़ों सेवा केंद्रों का संचालन कर रही, हमारे जैसे सैकड़ों बहनों का जीवन संवारने वाली, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, भोपाल जोन की इंचार्ज, और बड़े एनर्जेटिक वे में मैंने दीदी को जब भी सुना है, एक ऐसी प्रेरणा दीदी के द्वारा हमको मिलती है, ऐसी महान विभूति अवधेश दीदी जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए अपना इंस्पिरेशनल वर्ड हमारे बीच में रखने के लिए निवेदन करूंगी। अवधेश दीदी जी।
ओम शांति। सभी बोले ओम शांति। अभी हम सभी बहुत गहरे गहरे, हर एक अपने अपने विचारों से सबको गंगा की, ज्ञान की गंगा में प्रभावित कर रहे थे। मुझे आज के विषय पर कुछ शुभ भावनाएं, कुछ प्रेरणाएं, कुछ इंस्पायरेशन देने के लिए कहा है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, टाइम पहले से काफ़ी हो गया है, लेकिन थोड़े से शब्दों में, थोड़े से ही समय में अपने विचार अवश्य देना चाहूँगी कि जिस विषय को लेकर के हम सभी चल रहे हैं कि स्वस्थ शासन, जो हमारे सफल प्रशासक की एक कुंजी है, तो स्वस्थ शासन के लिए सबसे पहले चाहिए प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी एक ऐसा शब्द ही नहीं, फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन मजबूत होता है, बिल्डिंग जितनी भी ऊंची हम बनाना चाहें बना सकते हैं, तो उसके लिए प्योरिटी बहुत आवश्यक है। इस प्योरिटी के सब्जेक्ट को लेकर अपने आदरणीय पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लेकर के चल रहे हैं और विश्व के 140-150 देशों में इसी फाउंडेशन के आधार पर ये कार्य संस्था कर रही है। लेकिन इस प्योरिटी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम अनुभव करना चाहें तो कैसे अनुभव कर सकते हैं वर्तमान के इस कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया में। तो मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अपने विवेकानंद जी जब विदेश में भाषण करने के लिए गए थे कि भाषण से तो प्रभावित सभी होते ही हैं, एक महिला बहुत प्रभावित हो रही थी। प्रभावित होते होते विवेकानंद जी से कहा मुझे आपसे 2 मिनट के लिए समय चाहिए और वो कौन सा समय उन्होंने दिया और समय लेकर के पूछा कि मुझे आपका भाषण आपका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया, काश मैं आपसे शादी कर लूं, आप जैसा बच्चा पैदा होगा देश का कितना बड़ा कल्याण होगा। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, माताश्री मैं आपका पुत्र, आज से और अभी से आप मेरी माताश्री, शादी करेंगे, मैं 25 वर्ष का हूँ, 25 वर्ष का समय लेंगे, फिर आपको बेटा पैदा होगा, आप तो मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूँ। यह है प्रैक्टिकल का पेपर जो आप सभी के सामने आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस प्योरिटी में हम नंबर 1 लें तो प्रशासन हमारा बहुत अच्छा चल सकता है। इस प्रशासन के साथ साथ जितनी हमारी प्योरिटी की गहराई होती जाएगी उतने ही हम मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि चरित्र से बढ़कर के संसार में कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। और आप सभी भी कहते हैं कि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। और आज चरित्र को हम मूल्य नहीं दे रहे हैं, मात्र धन को मूल्य दे रहे हैं। तो पहली लाइन, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी, प्योरिटी को अंडरलाइन कीजिए, अपने जीवन में लाइए, प्रशासन में लाइए। दूसरी है अथॉरिटी। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के आधार पर हम जो चाहें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अथॉरिटी का मतलब अपना अधिकार, अपना ओरिजिनल संस्कार, हम अधीन नहीं हो, हम अधिकारी हैं। इस अथॉरिटी के आधार से निश्चित ही आप किसी को सफलता का उपहार दे सकते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम करके दिखाऊंगा, हो जाएगा, सफल हो जाएगा निश्चित रूप से। आप क्यों क्या कैसे वैसे में टाइम निकालते हैं, दूसरों का निश्चित रूप से समय का दुरुपयोग तो होता ही है लेकिन आपकी शक्तियों का भी सदुपयोग नहीं होता है। तो अथॉरिटी की शक्ति को अपनाएं, उस आधार से हम काम करें। और तीसरा श्योरिटी, गारंटीड, आप निश्चित रूप से वो मानव हैं जिस मानव के लिए बहुत बड़ी गाथा है, बड़े भाग्य मानस्तन पावा, भगवान ऊपर वाला हम मानव, भगवान नीचे वाले, उसकी संतान है। आप श्योरिटी दे सकते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा कौन करेगा, कौन नहीं करे, हम करेंगे आप करेंगे, आपको श्योरिटी दे रहे हैं आपका कार्य सफल होगा 100% होगा। तो जब हमारे अंदर ये भावना होगी हमारा प्रशासन बहुत अच्छा हो। और चौथी बात है चैरिटी, बिगिंस एट सेल्फ एट होम। ये काम अपने आप से शुरू करें। हम बोलने में बहुत अच्छा कुछ बोल जाते हैं लेकिन कार्य में उतनी सफलता हम नहीं पा सकते, इसके लिए दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता बहुत बड़ी शक्ति है। जिस दृढ़ता के लिए हम क्या कहते हैं, हिमालय जैसा अटल, सागर जैसा गहरा, हम जो भी जैसा भी चाहें, सफलता हमारी दासी के समान आगे पीछे घूमती है, विश्व भी अमृत बन जाता है, सांप भी शिवलिंग बन जाता है। बहुत बड़ी दृढ़ता में ताकत है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मेरी शुभ भावना है कि आज के शुभ दिवस पर, इतने बड़े विषय पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप वो विशेष आत्माएं हैं जिनको भगवान ने पुकारा है। आप सतयुगी स्वर्णिम संसार बनाने के अधिकारी आत्माएं, आज से अपने आप को अधिकारी समझिए, और भगवान के मन में आप एक एक आत्मा की मूर्त बसी हुई है। आपको निमंत्रण देके यहाँ बुलाया है, आप सब यहाँ पहुँच गए हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, मुझे अपने भारत को स्वर्णिम बनाना है, क्योंकि स्वर्णिम भारत हमारा साधारण नहीं, केवल भारत नहीं, विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु बनने जा रहा है और बन के ही रहेगा। ये मेरी शुभ भावना है, मेरी प्रेरणा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत सुंदर आपने प्योरिटी, अथॉरिटी, श्योरिटी और चैरिटी, हाँ, कितने प्रकार के टीज पिलाए आपको, सबने पिया, हाँ, ऐसी टी पी आप सबने। चलिएगा, अभी हम दिल से दीदी का धन्यवाद कहेंगे और आगे बढ़ते हुए आज की हमारे इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन, इंटरनेशनल स्पीकर है आप और एडमिनिस्ट्रेटर विंग की आप चेयरपर्सन, और दिल्ली ओआरसी के आप डायरेक्टर है, और ऐसे कहेंगे हमारे जैसे टीचर्स बहनों की आप ट्रेनिंग टीचर है, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की व्यक्तित्व की धनी हमारी आदरणीय श्रद्धेय आशा दीदी जी, आपकी ही प्रेरणा से इस कॉन्फ्रेंस का आज ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपका विशेष निमंत्रण आप सबको दे करके आपने दीदी ने यहाँ बुलाया है, और दीदी जी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशेष रतन इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में गिनी जाती है। कई प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल ईयर फॉर द कल्चर पीस, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, मेडिटेशन कोर्सेज, और मिनिस्टर्स के लिए, एमएलएज के लिए आपने ऑर्गेनाइज किया, और आप सभी कुछ जो ज्ञान को सुनने वाले होंगे, मौनी मुरली क्लास, किसी से भी पूछो हम कहते हैं आशा दीदी जी की मुरली हम जरूर सुनते हैं। ऐसे विश्व भर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज तक की वे अपनी सेवाएं देने वाली इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की चेयरपर्सन आदरणीय श्रद्धेय आशा दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। अपना इंस्पिरेशन हम सबके प्रति दीजिएगा आशा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी अनुभवी वक्तावृंद और सभा में उपस्थित दत्त चित्त होकर सुनने वाले श्रोतावृंद, हम लोग लगभग 3 घंटे से इस हॉल में बैठे हैं और शायद मूसलाधार वर्षा भी हो रही है। यहाँ हॉल के अंदर ज्ञान वर्षा है और हॉल के बाहर जल की वर्षा है, दोनों ही अनिवार्य हैं। अधिक समय ना लूंगी, लेकिन बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। सभी स्पीकर्स ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न प्रकार की अपने अनुभव की बातें हम सबके सामने रखी हैं। ये जो विषय है स्वशासन, सेल्फ सॉवरेंटी, ये मैं आपको बताना चाहूंगी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं उनमें सबसे पहली शिक्षा ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले स्वयं को पढ़ाओ फिर दूसरों को पढ़ाओ। हमारे फाउंडर ने लगभग 14 वर्षों तक बहनों को भाइयों को इस ही तपस्या में रखा कि आपको अपने राजा पहले बनना है। और जब हम स्वराज अधिकारी होंगे, अपने आप पर हमारा आधिपत्य होगा, तो हर कार्य सहज संभव हो सकता है। सेल्फ सॉवरेंटी में जो काफी गहन विषय है और काफी बृहद भी है, कई प्रकार की बातें इसमें सम्मिलित हम करेंगे। नंबर वन, पूनम बहन ने कहा इंद्रियों की बात, लेकिन इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाली कौन, वो कौन सी शक्ति है, मैं कौन, सेल्फ माना क्या, सेल्फ हम किसको कहें। स्वाभाविक है दे नहीं, परंतु इस दे की मालिक राजा वो आत्मा है। आपको इस विषय में डिटेल में मेडिटेशन सेशंस में बताया जाएगा। और ये आत्मा क्या है, मन बुद्धि और संस्कार, आज हमारी हालत क्या है। मैं ज्यादा सोचना तो नहीं चाहते, लेकिन मेरे विचार रुक नहीं रहे हैं, मेरा नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूं। ये हमारी मन की हालत है। वो मन जिसको मैं कहती हूं मेरा मन, जरा दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए अपने आप से, क्या ये मन सच में आपका है, है आपका? मेरे पर अधिकार होता है, क्या आपका मन पर अधिकार है? इसी प्रकार से बुद्धि, जिसको हम कहते हैं निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति क्या मेरी इतनी क्लियर कट है, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर, जो स्वीकार की जा सके। इस बुद्धि को भी, माइंड यू, इंटेलेक्ट इज ए फेयर वेदर फ्रेंड, और इंटेलेक्ट दो मुंह वाली धार, जो तलवार जिसको कहते हैं ना, दोरी, ऐसी है इंटेलेक्ट। गलत काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, अच्छा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। दुर्योधन का यही तो हाल था, इस बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसमें विवेक मारा ना चाहे, कॉन्शियंस खत्म ना हो जाए, उसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता। इसी प्रकार कर्म, हर चीज पर हमारा आधिपत्य हो। जो डिटेल की बातें हैं, जो इस सेशन में टुवर्ड द एंड में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इन तीनों पर चाहिए। सिमिलरली मैं इंक्लूड करती हूँ सेल्फ सॉवरेंटी में अपनी वर्क प्लेस, जहां मैं काम करती हूँ। मैं अपने आप को कर्म योगी कहलाती हूँ। वर्क इज वर्शिप, बट टेल मी, इज रियली वर्क अ वर्शिप, और हैज इट बिकम अ वॉरशिप? सोचने की बात है। मेरा आधिपत्य अपने वर्क प्लेस पर भी चाहिए। आधिपत्य से अर्थ है वो मेरे लिए सुगम हो और मुझे आनंद प्रदान करे। कर्म से शक्ति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वो है। तीसरी चीज, आपके रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेस, धन आदि, इनको छोड़ दीजिए। सेल्फ के रिसोर्सेस क्या हैं? सेल्फ के रिसोर्सेस आपके गुण, आपकी शक्तियां हैं, आपकी कलाएं हैं, आपकी विशेषताएं हैं, परंतु उनका उपयोग कब और कैसे करना है? जहां लव की जरूरत वहां लॉ नहीं, जहां लॉ की जरूरत वहां लव नहीं। हाउ टू बैलेंस ऑल दीज रिसोर्सेस, ये भी सेल्फ सॉवरेंटी का एक हिस्सा बनता है। सिमिलरली हम अपने आप को कहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रशासक हैं। प्यारे भाई और बहनों, अच्छा प्रशासक हो जो सेल्फ सॉवरन है, और आप लोगों के सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। हमारी दादी जी कहा करती थी, जो हमारी चीफ थी दादी प्रकाश मणि, वो कहा करती थी, आप लोगों को, हम बहनों को कहती थी, जहां आप सेवा पर उपस्थित हो, आपको सबके दिलों को जीतना है। विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, स्पिरिट ऑफ लॉ एक चीज है। मैं लॉ से कुछ काम करूं, जो भाई साहब ने बहुत सुंदर कहा था, फियर एंड ग्रीड, उससे मैं कोई काम करूं, अलग से भय से मैं करूं, दूसरा भयभीत होकर के लॉ को माने, नहीं। दादी जी ने हमको ये बात सिखाई कि जिनके साथ आप काम करते हो, जिनकी सेवा पर उपस्थित हो, उनके दिलों को जीतो, तब आप राजा हैं, तब आप सेल्फ सॉवरन हैं, अदरवाइज। दिल को जीतना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्वयं को बहुत उन्नत करता है, क्योंकि अपने आप को ही हम चेंज करते हैं। अपने आप में ह्यूमिलिटी लाते हैं, पोलाइटनेस लाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, कोऑपरेशन एलिसिट करते हैं, विशेषताएं देखने की आदत बनाते हैं, स्पेशलिटीज को महत्व देते हैं, आदि आदि आदि। इस प्रकार हमारे सेल्फ सॉवरेन के अंदर ये चीज भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। उसके साथ साथ मास्टर ऑफ द सेल्फ, मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, ये मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, हो गया नो, मैं कहूंगी गुलामी है। अपने एनवायरमेंट, अपने सराउंडिंग्स, उसके ऊपर भी आधिपत्य होना। मुझे अपने देश के एक लोकसभा के स्पीकर, उनकी याद आ रही है, हमने एक बार उनसे सवाल किया, आप सारी पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, जब इतना शोर शराबा सब कुछ मचा होता है। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा, मैं उनको कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ तो वो कारोबार ठीक चलती है। यही चीज हम सबके साथ लागू होती है। आप सबने अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात सुनी होगी कि जब वो अपने देश से जा रहे थे तो किसी ने कहा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज के विषय से संबंधित है तो मैं उसे शेयर कर रही हूँ। जब इस देश से जा रहे थे, अपने देश से, भारत देश से, तो किसी ने कहा भारत से कोई सौगात ले चलो। भारत से क्या सौगात लेके जाएं? यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनके कारण से भारत भारत है। ठीक है, तो वजीरों ने एक ढूंढा सन्यासी, पर्ण कुटीर में जंगल में थे, उनके पास गए, हे महात्मन, आपको सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट याद कर रहे हैं, अपने देश ले जाना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहता, आप ऐसे पर्ण कुटीर में हैं, खाने को भी नहीं, आदि एकदम ऐसे शैबी रीति से आप रह रहे हैं, आप चलिए वहां, आपको बहुत उपलब्धियां होंगी, बहुत अच्छे महल मिलेंगे आदि। मैं नहीं जाना चाहता, तीन बार पूछा, तीनों बार ना कर दिया। वो गए और अलेक्जेंडर को बोला कि भाई वो महात्मा तो आने से इनकार कर रहे हैं, आप जानते हैं अलेक्जेंडर ना तो ले ही नहीं सकते थे। उनका मैं चलता हूं। चले, जब चले तो उनका महात्मा, आपको हमारे देश चलना होगा हमारे साथ। बोला मैं नहीं जाना चाहता हूं। बोला आप क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने अपनी वॉइस रेज की, शॉर्ट में सुना रही हूं, वॉइस रेज की, कहा आप क्यों नहीं चलेंगे? कहा मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपने देश में संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा, अलेक्जेंडर ने क्रोध में बोले, कहा ये तलवार देखिए, सॉरी, उससे पहले क्रोध में वो जब बोले तो महात्मा जी ने कहा, मैं गुलामों के साथ नहीं जाता। अलेक्जेंडर अवाक, ये इतना साधारण सा व्यक्ति और मुझे कह रहा है गुलाम, गुलामों के साथ नहीं जाता। बोला क्या बोला? मैं गुलामों के साथ नहीं जाता, आप मेरे, आप इस समय मेरे गुलाम हैं। क्यों? मैंने क्रोध को अपना गुलाम बनाया है, उसको जीता है, इस समय आप क्रोध के भी गुलाम हैं, आप मेरे गुलाम के गुलाम हैं। अलेक्जेंडर ये बात सुन नहीं सकता था, तलवार निकाली और बोले, ये देखिए, खूब देखिए, इससे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोला आप टुकड़े टुकड़े मेरे शरीर के कर सकते हैं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे टुकड़े आप नहीं कर सकते। ये है भारत की आध्यात्मिकता। और यहां से हम आरंभ करते हैं आत्मा से, और आत्मा पर ही हम क्लोज करते हैं अपनी जिंदगी। आत्मा होकर हम आते हैं और आत्मा होकर के ही वापस लौटते हैं, देह तो यही रहती है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमने अन्य अनेक प्रकार की चीजों का महत्व देखा, जाना, रखा। इस कॉन्फ्रेंस से मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि अपने आप के मालिक और राजा यहां से आप सब राजाई संस्कार लेकर के जाइएगा, स्वयं को राजा बना करके जाइएगा, ये कॉन्फ्रेंस की सफलता होगी। मंजूर है? मंजूर है? पीछे मंजूर नहीं लगता है, मंजूर है? मुश्किल नहीं है, इसमें केवल दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए। जहां संकल्प में दृढ़ता होगी वहां कार्य सब संभव है, ऐसी हमारी मान्यता है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। कल से आपके बहुत ही ब्यूटीफुल सेशंस होने वाले हैं, कोई भी सेशन आप मिस नहीं करिए, एक से एक बढ़ करके बहुत प्राप्ति होगी और अवश्य भरपूर होकर के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी जी, बहुत सुंदर आपने प्रकाश डाला अपने सेल्फ रिसोर्सेस पर। कई बार हम और रिसोर्सेस को देखते हैं जो यहाँ हमें सेल्फ रिसोर्सेस के रूप में गुण शक्तियाँ विशेषताएँ, ताकि हम कहीं डिपेंडेंट न हो जाए, इनडिपेंडेंट बन करके अपने सोर्सेस को यूज करके अपने आप को स्वराज्य अधिकारी कैसे बनाएं। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रकाश डाला, बैलेंसिंग के ऊपर भी आपने कहा, पब्लिक सर्वेंट एज ए सर्वेंट के रूप में हम कैसे सेवा करें, और दिल को जीतने की बात। दिलाराम परमात्मा के द्वार पर आए हो, घर पे आए हो, उस दिलाराम के दिल में बैठने वाले सबके दिल को जीतने का काम अवश्य करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस कार्यक्रम का लास्ट समापन विधिवत होकर के वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं एक खास शैलेश भाई जी से निवेदन करूंगी। आप सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग गोधरा गुजरात से आए हुए हैं, आप सबका सम्मान करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए भ्राता शैलेश जी को मैं निवेदन करती हूँ।
ओम शांति। आज के मंगल दिवस पर इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अंदर सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा जो निराकार है और अव्यक्त पिता श्री ब्रह्मा के अव्यक्त संकल्पों से परमात्मा की प्रेरणा से ये सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इसलिए परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता हमारे आदरणीय आशा दीदी जी ने हमें सभी के दिलों पर राज्य कैसे करना है, प्रशासन कैसे करना है, ऐसी बहुत ही गुह्य प्रेरणाएं दी, तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके पूर्व आदरणीय अवधेश दीदी जी ने इस देश को, इस भारत को पुनः स्वर्णिम बनाना है तो चरित्रवान प्रशासकों के द्वारा ये कार्य संभव हो सकता है, ऐसी प्रेरणाएं दी, तो दीदी जी आपका भी शुक्रगुजार है, धन्यवाद है। हमारे आदरणीय पूनम दीदी जी ने स्वयं के राजा कैसे बनना चाहिए इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी युक्तियां बताई, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के समारंभ के हमारे त्रिमूर्ति महानुभाव आदरणीय प्रेमसुख बिश्नोई जी, आदरणीय मनोज सेठी जी और डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी ने बहुत ही मूल्यवान विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए और शुभ प्रेरणाएं दी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी भी मेरे साथ कर्तध्वनि से अभिवादन करते रहे। साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी ने बहुत ही सुंदर रीति से सभी के नाम लेकर और आप सबका स्वागत किया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम की संचालन विधि बहुत सुंदर रीति से की, ऐसी हमारे ब्रह्मा कुमारी राधाबेन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और आप सब हमारे जिन जिन स्थानों से सेवा केंद्रों के इंचार्ज बहने और भाइयों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको प्रेरणा देकर यहां तक भगवान के घर पहुंचाए, तो इन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथ साथ हमारे ज्ञान सरोवर के सभी डिपार्टमेंट्स जो आप 3 दिन रहेंगे, आपके सरबरा करेंगे, आपकी पालना करेंगे, तो ज्ञान सरोवर के सभी डिपार्टमेंट, पांडव भवन के भी सभी डिपार्टमेंट, साथ साथ शांतिवन हमारे जो तलेटी में हैं, वो सभी डिपार्टमेंट के भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे निर्मला दीदी है, मुन्नी बहन जी है, पांडव भवन के जो हमारे शशि बहन है, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अनुमति दी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप यहां से इतने अच्छे अच्छे विचार, सेल्फ रूलिंग की जो युक्तियां हैं, परमात्मा ने हमें राजयोग का 3 दिन सेशन करेंगे, तो राजयोग के अंदर जो हमारे 8 रूलिंग पावर्स का भी आपको नॉलेज दिया जाएगा, तो ये जो 8 शक्तियां हैं प्रशासन करने के लिए बहुत उपयोगी है, वो भी आप यहां जाकर अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर उसका उपयोग करेंगे। तो अंत में समय भी बहुत हो गया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति।
शैलेश पर कभी विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी कार्यक्रम समापन बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए हैं। मैं निवेदन करूंगी हमारी आदरणीय श्रद्धेय दीदियों को, मंच पर उपस्थित हमारे महानुभव है उनको ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगे दीदियां। और आप सबके लिए विशेष कल मॉर्निंग सेशन सवेरे 6 से 6:30 बजे तक फिजिकल एक्सरसाइज होगा, मॉर्निंग 6 to 6:30 फिजिकल एक्सरसाइज आप सबके लिए, और 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक राजयोग शिविर जो स्वशासन की कला सिखाने वाला राजयोग, उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। 6 बजे से आपको योग सिखाने के लिए खास दिल्ली से हमारे भाई आए हुए हैं, वो सवेरे सिखाएंगे और उसके बाद योग कब होगा, आप सभी अटेंशन से जरूर आइएगा। मॉर्निंग सेशन यहीं पे होगा, यहीं हार्मनी हाउस में ही, हार्मनी हॉल में प्रोग्राम होगा। अभी सौगात के पश्चात हम सभी पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद देने के लिए 2 मिनट सभी याद में बैठेंगे, दिल से उस पिता परमात्मा को धन्यवाद। बस अभी बारिश बंद ही होने वाली है, क्योंकि अभी पता पड़ गया है ना कि अभी फरिश्ते शाइनिंग स्टार सभी यहाँ से निकलने वाले हैं, लकी स्टार्स निकलने वाले हैं। अभी 2 मिनट हम परमात्मा को दिल से दुआएं देंगे, धन्यवाद देंगे इस कार्यक्रम के लिए।
निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे।